बाढ़ तब होती है जब अत्यधिक मात्रा में जल होता है और यह सामान्यतः शुष्क क्षेत्रों को कवर करता है। जल विज्ञान के विज्ञान में बाढ़ का अध्ययन सम्मिलित है। वे धीरे धीरे भी शुरू कर सकते हैं और फिर गति पकड़ सकते हैं। बाढ़ भूमि पर जल का अतिप्रवाह है। कभी कभी भारी बारिश या अन्य प्राकृतिक आपदाओं से नदी में अतिरिक्त जल आ सकता है। जब ऐसा होता है तो जल नदी तल में अपने सामान्य रास्ते से बहकर सूखी जमीन पर आ जाता है। बाढ़ के कारण क्या है? बाढ़ के दौरान लोगों को खुद को और अपने सबसे कीमती सामानों को जल्दी से ऊंचे स्थान पर ले जाना चाहिए। सुरक्षित स्थान की तलाश में घर छोड़ने की प्रक्रिया को निकासी कहा जाता है। बाढ़ अनियमित अंतरालों पर आती है और आकार, अवधि और प्रभावित क्षेत्र में भिन्न भिन्न होती है। जल प्राकृतिक रूप से ऊंचे क्षेत्रों से निचले क्षेत्रों की ओर बहता है। इसका मतलब ये है कि ऊंचे इलाकों में पहुंचने से पहले निचले इलाकों में तेजी से बाढ़ आ सकती है। नदियों में बाढ़ तब भी आ सकती है जब प्रवाह दर नदी चैनल की क्षमता से अधिक हो जाती है, विशेषकर जलमार्ग में मोड़ या घुमावदार स्थानों पर। बाढ़ अक्सर घरों और व्यवसायों को नुकसान पहुंचाती है यदि वे नदियों के प्राकृतिक बाढ़ के मैदानों में हों। बाढ़ के कारण निम्नलिखित कारण बाढ़ का कारण बन सकते हैं। एक, बारिश। जब भी जल निकासी प्रणाली की क्षमता से अधिक बारिश होती है तो वे बाढ़ का कारण बन सकती हैं। दो, नदी का उफान। नदियां अपने किनारों से बहकर बाढ़ ला सकती हैं। ऐसा तब हो सकता है जब ऊपर की ओर सामान्य से अधिक जल हो और जैसे ही यह नीचे की ओर आसपास के निचले इलाकों में बहता है वहां विस्फोट होता है और जल जमीन में समा जाता है। तीन, तटीय इलाकों में तेज हवाएं, समुद्री जल, भारी हवाओं और तूफानों द्वारा शुष्क तटीय भूमि पर ले जाया जा सकता है और बाढ़ का कारण बन सकता है। ये और भी बदतर हो जाता है अगर हवाएं अपने साथ बारिश भी लेकर आती हैं। कभी कभी सुनामी के परिणाम स्वरूप समुद्र का जल अंदर की ओर बहकर नुकसान पहुंचा सकता है। चार, बांध टूटना। बांध मानव निर्मित संरचनाएं हैं जो ऊंचाई से निचली भूमि की ओर बहने वाले जल को रोकने के लिए बनाई जाती हैं। जल में उपस्थित ऊर्जा का उपयोग बिजली पैदा करने के लिए प्रोपेलर को घुमाने के लिए किया जाता है। कभी कभी बांध में बहुत अधिक जल जमा होने के कारण ये टूट सकता है और क्षेत्र में अतिप्रवाह हो सकता है। बांध को टूटने से बचाने के लिए जानबूझकर अतिरिक्त जल भी छोड़ा जा सकता है और इससे बाढ़ भी आ सकती है। पाँच, बर्फ और बर्फ पिघलती है। ठंडे क्षेत्रों में सर्दियों में भारी बर्फ सामान्यतः कुछ समय तक बिना पिघली रहती है। कुछ पर्वतों पर बर्फ की परत जमी होती है। कभी कभी तापमान बढ़ने पर बर्फ अचानक पिघल जाती है जिसके परिणाम स्वरूप जल बड़े पैमाने पर उन जगहों पर चला जाता है जो सामान्यतः शुष्क होते हैं। इसे सामान्यतः बर्फ पिघलने वाली बाढ़ कहा जाता है। छह, शहरी बाढ़। शहरी बाढ़ एक निर्मित वातावरण में भूमि या संपत्ति का जलप्लावन है, विशेष रूप से अधिक घनी आबादी वाले क्षेत्रों में, जो वर्षा के कारण जल निकासी प्रणालियों जैसे कि तूफान सीवरों की क्षमता को प्रभावित करती है। यद्यपि कभी कभी आकस्मिक बाढ़ या बर्फ पिघलने जैसी घटनाओं से ट्रिगर होता है, शहरी बाढ़ एक ऐसी स्थिति है जो समुदायों पर इसके दोहराव और प्रणालीगत प्रभावों की विशेषता है जो इस बात की परवाह किए बिना हो सकती है कि प्रभावित समुदाय निर्दिष्ट बाढ़ के मैदानों के भीतर या जल के किसी भी निकाय के पास स्थित हैं या नहीं। बाढ़ के प्रभाव क्या हैं? बाढ़ का सबसे तात्कालिक प्रभाव जीवन की विनाशकारी हानि और इमारतों और पुलों, सीवरेज सिस्टम, नहरों आदि जैसी अन्य संरचनाओं का विनाश है। बाढ़ बिजली पारेषण को भी नुकसान पहुंचाती है और कभी कभी बिजली उत्पादन को भी नुकसान पहुंचाती है, साथ ही पीने के जल के उपचार और जल की आपूर्ति में भी कमी आती है। बाढ़ के जल में मानव मल के साथ स्वच्छ जल की कमी से जलजनित बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है जिसमें टाइफाइड, हैजा और कई अन्य बीमारियां सम्मिलित हो सकती हैं। बाढ़ का स्थान। बाढ़ का जल सामान्यतः कृषि भूमि में डूब जाता है जिससे भूमि काम करने लायक नहीं रह जाती है और फसलों को बोने या काटने से रोका जा सकता है जिससे मनुष्यों और खेत जानवरों दोनों के लिए भोजन की कमी हो सकती है। अत्यधिक बाढ़ की स्थिति में किसी देश की पूरी फसल बर्बाद हो सकती है। कुछ वृक्ष प्रजातियां अपनी जड़ प्रणालियों में लंबे समय तक बाढ़ से नहीं बच सकती। माध्यमिक और दीर्घकालिक प्रभाव पर्यटन में अस्थायी गिरावट, पुनर्निर्माण लागत या भोजन की कमी के कारण कीमतों में वृद्धि के कारण आर्थिक कठिनाई गंभीर बाढ़ का एक सामान्य परिणाम है। बाढ़ प्रबंधन के तरीके। कुछ बाढ़ नियंत्रण तकनीकें प्राचीन काल से चली आ रही हैं। इन तकनीकों में बाढ़ मार्गों का निर्माण, नीचे की ओर प्रवाह को प्रतिबंधित करने के लिए पहाड़ियों को सीढ़ीदार बनाना और अधिशेष जल को रोकने के लिए वनस्पति रोपण, बाढ़ के जल को मोड़ने के लिए कृत्रिम चैनल सम्मिलित हैं। बाढ़ के दौरान अतिरिक्त जल जमा करने के लिए तटबंध, झीलें, बांध, जलाशय और रिटेंशन तालाब अन्य तरीके हैं। बाढ़ प्रबंधन की कुछ अन्य तकनीकें हैं। एक, बांधों का निर्माण। कई बांध और उनसे जुड़े जलाशयों में बाढ़ नियंत्रण और सुरक्षा उनके प्राथमिक लक्ष्यों में से एक है। बाढ़ के जल को भरने के लिए एक विशिष्ट मात्रा में जगह प्रदान करने के लिए कई बड़े बांधों में बाढ़ नियंत्रण आरक्षण सम्मिलित होता है, जहां बरसात, गर्मी के मौसम की शुरुआत से पहले जलाशय का स्तर एक विशेष ऊंचाई से नीचे रखा जाना चाहिए। दो, नदी सुरक्षा। नदियों को अक्सर सावधानीपूर्वक नियंत्रित किया जाता है, क्योंकि कई देशों में उनमें बाढ़ आने का खतरा रहता है। नदियों को उनके किनारों पर बहने से रोकने और बाढ़ को रोकने के लिए तटबंधों, जलाशयों और मेड़ों का उपयोग सुरक्षा के रूप में किया जाता है। तीन, बाढ़ के मैदान और भूजल पुनःपूर्ति। अतिरिक्त जल को भूभाग पर पुनर्निर्देशित करके, जो इसे सोख सकता है, भूजल को फिर से भरा जा सकता है। प्राकृतिक जलाशय के रूप में जमीन का उपयोग करके यह विधि भविष्य के सूखे के प्रभाव को कम कर सकती है। अभ्यास प्रश्न। एक, बाढ़ क्या है। दो, बाढ़ का कारण क्या है। तीन, बाढ़ के प्रभाव क्या है। चार, बाढ़ प्रबंधन के तरीके लिखें।